Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
नमस्कार। जैसा कि कल जिक्र हुआ था, अभी तक चर्चा चल रही है राज्यसभा में रिजर्वेशन को लेकर, और एक दिन का बढ़ाने का प्रस्ताव है कि राज्यसभा का सेशन एक दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। हमने कल भी कहा था कि लोकसभा में कोई भी बड़ी पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि उनके अपने अपने जो वोट बैंक है वो सवर्णों में हैं। 10% कोटा जो आर्थिक आधार पर दिया गया है, उसको लेकर ये सारी चर्चा चल रही है। लेकिन राज्यसभा में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी मेजॉरिटी नहीं है, उनको 163 सीटें चाहिए और वहाँ पर सबकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमारा यही कहना था कि कल तो पास होता नहीं, यानी आज, और विपक्ष की कोशिश रहेगी कि इसको रोके। कोशिश जारी है, रिकॉर्डिंग के समय तक कोशिश जारी है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने तक की बात हो चुकी है कि ये जो पूरा कोटा सिस्टम है जो 10% बढ़ाया है, इसको लेकर क्या किया जाएगा। वैसे कोटा सिस्टम को लेकर योगेंद्र यादव हैं हमारे दोस्त, हैं स्कॉलर, हैं विद्वान, हैं सिफोलॉजिस्ट, हैं स्वराज्य पार्टी चलाते हैं, पहले अरविंद केजरीवाल के साथ थे। उनका ये कहना है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% कोटा बेमानी है, इसलिए ये आरक्षण लॉलीपॉप देना नहीं है, बल्कि आपकी जेब में पहले से ही पड़े लॉलीपॉप को ही आपको सौंपना और उसे उपहार बता देना है। अरे भाई, 10% से ज़्यादा EBC तो पहले से ही चुने जाते हैं, ये योगेंद्र यादव का कहना है। जिग्नेश मेवानी हैं, जो बिल्कुल संगठन से, संघर्ष से, स्ट्रगल से, आंदोलन से निकल कर आए हैं, उनका कहना है RSS के लोगों से बात हुई, BJP 10% गरीबों को आरक्षण क्यों दे रही है, जो पता चला वो बेहद खतरनाक है। RSS जातिगत आधार पर, जाति के आधार पर रिजर्वेशन के हमेशा से खिलाफ रही है। अभी पहले चरण में संविधान संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्थिक आधार पर शुरू करेंगे, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC का सारा रिजर्वेशन खत्म करके सिर्फ आर्थिक आधार पर रखेंगे, ये कहना है जिग्नेश मेवाणी का। तीसरी तरफ आप मोहन भागवत जो है RSS के, उनका ये कहना था 21 सितंबर 2015 टाइम्स ऑफ इंडिया, उनका कहना है वी बिलीव फॉर्म अ कमिटी ऑफ पीपल जेन्युइनली कंसर्न फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन एंड कमिटेड फॉर सोशल इक्वालिटी इंक्लूडिंग सम रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सोसाइटी दे शुड डिसाइड विच कैटेगरीज रिक्वायर रिजर्वेशन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। हमारा ये मानना है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें समाज से भी प्रतिनिधि लिए जाएं, जो ये तय करें कि किस किस तरह के लोगों को आरक्षण दिया जाए और कब तक दिया जाए। आगे वो कहते हैं, इफ यू वुड हैव इंप्लीमेंटेड दिस पॉलिसी एज एनविसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंस्टेड ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स ओवर इट देन प्रेजेंट सिचुएशन वुड नॉट हैव अराइव्ड सिंस इंसेप्शन इट हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड। अगर हमने ये बात मान ली होती संविधान में, तो आज ये हालत ना होती जो है कि आरक्षण को राजनीति की निगाहों से देखा जा रहा है, पॉलिटिक्स की निगाहों से देखा जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है VP सिंह तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो चौधरी देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री थे, उनकी इंडिया गेट के लॉन्च पर रैली हुई थी, बहुत बड़ी विशाल रैली हुई थी। उस रैली से VP सिंह को पता चला कि ताकतें क्या होती हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा कर दी थी, और फिर पूरे देश में हंगामा मच गया था। जो अगड़े हैं, जो सवर्ण हैं, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया था कि रिजर्वेशन क्यों किया गया है पिछड़ी जातियों के लिए। इसके पीछे भी सोच क्या थी कि LK अडवाणी अपने एयर कंडीशन टोयोटा रामरथ में रथ यात्रा जो उन्होंने निकाली थी, जो अपने पीछे फिरका परस्ती का, सांप्रदायिकता का ऐसा काला धुआं छोड़ता चला गया जिसने हमारे समाज का मुंह काला कर दिया। उनका इरादा था हिंदू समाज को जोड़ा जाए जाति से हटकर। VP सिंह का मानना था कि ये लोग हिंदू समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम गांव-गांव में जाति के नाम पर लोगों को उनकी अलग पहचान देंगे, ये VP सिंह का कहना था। मैं उन दिनों का गवाह हूं। तो मंडल कमीशन ने यही किया था। अब ये जो आर्थिक आधार लाया गया है, इसका मकसद सीधा साधा ये है कि अब धीरे धीरे जातिगत आधार को खत्म किया जाए और सिर्फ आर्थिक आधार लागू किया जाए, ऐसा मानना है जिग्नेश मेवानी का, और योगेंद्र यादव भी यही कह रहे हैं। राज्यसभा में डिबेट जारी है। मुझे दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां याद आ रही हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी सी है, कोई पुल बना है। 10% आरक्षण लॉलीपॉप भी नहीं है, 10% आरक्षण कुछ भी नहीं है, असली असली सवाल है नौकरियों का, सरकारी नौकरियां हैं कहाँ, किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई ढूंढ नहीं रहा। एक मैं आपको छोटी सी रिपोर्ट बताता हूँ, 5 अगस्त 2018 की रिपोर्ट है ये, इसी साल पिछले साल की, 24 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राज्यसभा के एक सवाल में 8 फरवरी को उत्तर दिया गया कि 10 लाख ऐसी नौकरियां हैं, पोजीशंस हैं शिक्षकों की, एलिमेंट्री स्कूल्स में 9 लाख और सेकेंडरी स्कूल्स में 1,10,000 जो खाली पड़ी हुई हैं। मार्च 27 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ब्यूरो ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने ये कहा, उनके ये स्टैटिस्टिक्स हैं, कि 4,40,000 वैकेंसीज ऐसी हैं जो भरी नहीं गई हैं इन सिविल और डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस में। उनका ये भी कहना था कि एडिशनल 90,000 जो नौकरियां हैं वो और खाली हैं स्टेट आर्म पुलिस में। टोटल वैकेंसीज को लेकर जो टोटल इसका किया जाए तो 5,40,000 सारे देश में ऐसी वैकेंसीज हैं जो खाली हैं। अभी हमने इसमें यूनिवर्सिटीज़ नहीं जोड़ी हैं, अभी हमने इसमें कॉलेजेस नहीं जोड़े हैं, अभी हमने इसमें और बहुत से ऐसे सरकारी इदारे हैं जहां पर बिल्कुल फ्रीज लगा दिया गया है, फ्रोजन कर दी गई हैं नौकरियाँ। सरकारी नौकरियाँ हैं नहीं, 10% आप आरक्षण दे रहे हैं, तो सीधा साधा ये एक लॉलीपॉप भी नहीं झुंझुना है चुनाव से पहले का। संसद में राज्यसभा में जो जिक्र हो रहा है कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिल इतने सालों से अटका हुआ है, उसको प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे आप? जो सिटीजन रजिस्टर्स का बिल है आसाम का, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? आज प्रायोरिटी उसकी देनी थी, इसको प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? मकसद साफ है, हाथ पाँव फूल रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 3 महीने का काउंटडाउन रह गया है शायद, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा तब तक जितनी चुनावी रिश्वत दे सकते हो तो, ये सिलसिला चल रहा है इस वक्त। सन 1526 में यहां बाबर आया था, इस्लाम उससे पहले ही आ चुका था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध का वो इलाका जो पाकिस्तान में है, सखर और रोहड़ी दो जगह हैं, दरिया सिंध के एक तरफ सक्खर है, दूसरी तरफ रोहड़ी है। रोहड़ी एक बहुत ही प्राचीन शहर है, रोहड़ी और पाटलिपुत्र व्यापार के दो केंद्र हुआ करते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले रोहड़ी में आया था, इस्लाम की आमद वहाँ हुई थी। अनपढ़ लोग सिर्फ मुगलों की बात करते कि हजारों साल से मुगल हम पर शासन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। 1526 में बाबर आया था और 1857 में बहादुरशाह जफर की बादशाही ख़त्म हुई थी, ये मुगल पीरियड था। उससे पहले यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी भी रही है, दिल्ली सल्तनत भी रहा है, लोधीज भी रहे हैं। बहरहाल बाबर ने मरते वक्त अपने बेटे को, हुमायूं को, ये बताया था कि अगर इस मुल्क पर राज करना है तो एक तो गाय मत काटना और दूसरे इनके दीन में, धर्म में कभी भी दखल मत देना। और भी बातें बताई थी, तो दीन में दखल नहीं देना। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि आजकल वो कुंभ मेले का जिक्र चल रहा है, कुंभ होने जा रहा है, तो शाहजहां के वक्त तक आते आते शाहजहां ने, तब तक मुगल एम्पायर जो था, मुगल साम्राज्य अपने एकदम चरम उस पर, अपने एकदम ऊंचाई पर था, तो शाहजहां ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कुंभ का मेला देखना चाहता हूँ। तो पूरी छावनी लगाई गई बादशाह के लिए, बादशाह की फौज, बादशाह का टेंट, सारे बल पूरी छावनी लगा दी गई और बहुत बड़ा मचान बनाया गया जिस पर शाहजहां बैठ के कुंभ का मेला देखेंगे, सामने जो हो रहा है सब कुछ त्रिवेणी पे। तो नागा साधुओं में ये परंपरा रही है कि उनके जो अखाड़े अलग अलग हैं उनमें प्रतिस्पर्धा होती है कि पहले शाही स्नान कौन करेगा। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि नागा साधुओं के दो झुंड भिड़ भी गए हैं आपस में, तलवारें और त्रिशूल लेकर। तो उस वक्त भी यही हुआ, शाहजहां ऊपर मचान पर बैठकर देख रहे हैं और नीचे नागा साधुओं के दो झुंड भिड़ गए आपस में, तलवारें और त्रिशूल लेकर मारकाट शुरू हुई कि पहले स्नान कौन करेगा, शाही स्नान। ये परंपरा आज तक है। तो दरबारियों ने कहा बादशाह सलामत फौज को भेज के इनको अलग करवाया जाए, यहाँ तो कत्लोगारत हो रही है, खून बह रहा है। वो बोले नहीं, इनके दीन में दखल नहीं देना है, ये इनके दीन का, इनके धर्म का अंदरूनी मामला है, इसे अपने आप ही सुलझाएंगे। आप मुसव्विरों को बुलाओ, मुसव्विर माने पेंटर, चित्रकार, वो इसकी तस्वीरें उतारे, उस दौर में कैमरे नहीं थे तो वो तस्वीरें बनाएं इसकी। तो वो मुसव्विरों को बुलाया गया। कहने का मतलब ये है कि जब जब भी बादशाहत यहाँ पर हुई है, चाहे वो मुग़लों की हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे वो राजे रजवाड़े हों हमारे यहाँ के, हिंदू हों, मुसलमान हों, नवाब, जो भी हों, उन्होंने आम जनता के ज़िंदगी में दखल नहीं दिया है, उसको वहीं पड़े रहने दिया है। जब जब अकाल वगैरह हुए हैं, अपने ही महल थोड़े बनवा लिए, साथ में खाना उनको दे देते थे बनवाने के लिए, बाकी जनता के धर्म में दखल नहीं दिया, लाइफस्टाइल में दखल नहीं दिया। यही बात सीखी हमारे जो नए भारत के निर्माता थे 1947 के बाद, उन्होंने कि जनता को छोटी मोटी करप्शन में, छोटे मोटे भ्रष्टाचार में सारी उम्र लिप्त रहने दो, ताकि अंदर से नैतिक साहस खत्म हो जाए सवाल पूछने का। ऊपर से रिश्वत भी दो उनको, रिश्वत का चलन चलने दो, छोटी छोटी चीज़ के लिए रिश्वत देनी पड़े या रिश्वत लेनी पड़े, लेनी हो तो आपकी अंतरात्मा खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, अब सवाल पूछते ही नहीं है। मैं जिक्र कर रहा हूँ उतना लंबा चौड़ा भूमिका बांध के हरदोई का, 8 जनवरी को, अभी ये बिजनेस स्टैंडर्ड की ही खबर है, लिकर बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट इवेंट ऑर्गेनाइज बाय बीजेपी लीडर। शराब की बोतलें खाने के पैकेट्स में बंद करके बीजेपी लीडर नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन जो है उनका एक इवेंट था एक मंदिर में, वो खाने के डिब्बे बांटे गए लोगों में, उनमें शराब की बोतलें भी थी, बच्चों को भी बांटे गए, बुजुर्गों को भी बांटे गए, इन लोगों ने कोई फर्क नहीं देखा, सबको एक निगाह से देखा।
कहाँ रहते हो? कौन लेके आया? यहाँ तुम लोगों को कौन लेके आया?
नितिन जो है नरेश अग्रवाल का बेटा, उसने एक सम्मेलन का आयोजन किया था पासी जो समाज है, पासी समाज, उसके लिए श्रवण देवी मंदिर में। इससे कुछ दिन पहले दिल्ली में एक समरसता खिचड़ी बनाई बीजेपी वालों ने। रामलीला ग्राउंड पर कहा गया कि दलितों के घर से चावल और दाल इकट्ठे किए गए हैं और विष्णु मनोहर नाम के जो शेफ हैं, कुक हैं, उनको बुलाया गया नागपुर से। बहुत बड़े बर्तन में 400 किलो चावल, 100 किलो दालें, 350 किलो सब्जियां, 100 किलो देसी घी, 100 लीटर तेल, 2500 लीटर पानी और 250 किलो स्पाइसेस, उसके अलावा और चावल डाल के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग यहाँ पर थे। आयोजकों ने बड़े गर्व से बताया, उन्होंने देखा कि कैसे 5000 किलो खिचड़ी बनाई गई और 25000 लोगों ने उसे खाया। ये दिल्ली बीजेपी के शेड्यूल कास्ट मोर्चा प्रेसिडेंट मोहनलाल गिहारा ने कहा है, एशियन एज में छपा है ये। इससे पहले 2004 में मुझे याद है मैं पूरे भारत का दौरा किया था 2004 के चुनाव में, जब इंडिया शाइनिंग था, जब अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी टीम देख ही नहीं पाई थी कि लोगों में कितना गुस्सा है, अंडर करेंट क्या है, इंडिया शाइनिंग था। तो मैं गाड़ी के जरिए, रेलवे के जरिए पूरे भारत का मैंने दौरा किया था। मैं तमिलनाडु में था, मैं चेन्नई से बेंगलोर जा रहा था जब खबर अखबार में पड़ी। ये खबर थी 12 अप्रैल की खबर थी 2004 की, ठीक है, ये outlookindia.com में 12 अप्रैल 2004 में आप जाकर देखें तो आपको मिल जाएगी। PTI के हवाले से खबर थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लखनऊ है, वहाँ पर 21 औरतें कुचल कर मारी गईं और बहुत सारी जख्मी हो गई, जब एक बहुत बड़ी भगदड़ मच गई भीड़ में, जहाँ पर बीजेपी के जो बहुत ही वरिष्ठ नेता लालजी टंडन लखनऊ से हैं, उनके जन्मदिवस पर मुफ्त साड़ियाँ बांटी जानी थी, मुफ्त साड़ियों के लिए 21 महिलाओं की जान चली गई। तो इस मतलब पूरी एक नीति रही है कि इतना गरीब रखो जनता को कि सारी उम्र उसकी सिर्फ जीवन बिताने में ही बीत जाए, जिंदगी काटने में ही बीत जाए, रिश्वत लेने देने में बीत जाए, कॉम्प्रोमाइज रहे, कोई सवाल ना उठाए। ये बिल्कुल यही किया 1947 के बाद कांग्रेसियों ने, कांग्रेसियों के बाद अब बीजेपी वाले वही कर रहे हैं। सन 47 के बाद 64 तक जो पीढ़ी थी नेताओं की, वो स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष से निकल कर आई थी, तप कर आई थी, जेलों में वो लोग रहे थे, चाहे बाबू राजेंद्र प्रसाद हो, महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, जे बी कृपलानी हो, लोकमान्य तिलक हो, गोखले हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, मैं इतने नाम आपको गिनवा नहीं सकता। उसके बाद जब से श्रीमती इंदिरा गांधी का आना हुआ, हमारी राजनीति की शक्ल ने अपना चेहरा बदल दिया है एकदम। संजय गांधी के साथ जो लोग आए वो सिर्फ शासन किया उन्होंने, अभी तक कर रहे हैं, जब जब भी कांग्रेस आई। उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं और विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं, जो नौजवान नेता थे इमरजेंसी के खिलाफ, उन्होंने भी वही किया जो कांग्रेस के इन नेताओं ने किया, चाहे वो मरहूम प्रमोद महाजन हों, गोपीनाथ मुंडे हों, नरेंद्र मोदी हों, नितिन गडकरी हों, अरुण जेटली हों, चाहे रामविलास पासवान हों, लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, ये तमाम लोग जो, ये भी व्यवस्था को इन्होंने, व्यवस्था ने इनको लील लिया जैसे, तो कोई हैरानी नहीं होती अभी तक ये समरसता खिचड़ी बढ़ती है और लोग मुफ्त की खिचड़ी खाने पहुंच जाते हैं। कोई यकीन, कोई मतलब हैरानी नहीं होती जब खाने के पैकेट में शराब की बोतल दे दी जाती है, चुनाव से पहले झोपड़पट्टी में शराब, साड़ियाँ, ये सब बांटी जाती हैं, कोई हमें हैरानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोगों को इस स्तर पर रखा गया है जिंदा रहने के, कि वो सिर्फ जिंदा ही रह पाए। जरा सोचिए, क्या ऐसा नेतृत्व हमें चाहिए? नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।
Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including Eastern and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.